नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात करेंगे। नाम है भगवान को मत बहकाइए। इसमें गुरुदेव भक्ति के असली मायने समझा रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ रस्में या बस मीठी मीठी बातें नहीं हैं। तो चलिए जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। गुरुदेव शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कहते हैं भगवान के स्वरूप के बारे में। वो कहते हैं कि भगवान कोई इंसान जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, निराकार।
हाँ बिल्कुल। और ये कि हमने अपनी सुविधा के लिए, मतलब ध्यान करने के लिए उसे एक रूप दे दिया है। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि मेंढक शायद अपने जैसा भगवान सोचता होगा या हिरन अपने जैसा।
हाँ, ये सोचने वाली बात है,
पर असल में तो भगवान का कोई रूप है ही नहीं, वो एक निराकार शक्ति है।
तो यहीं से अगला सवाल उठता है, पर अगर भगवान का कोई रूप नहीं तो फिर ये जो हम चंदन अक्षत फूल चढ़ाते हैं या उनकी तारीफ में श्लोक पढ़ते हैं,
हाँ,
इसका उन पर क्या असर होता होगा?
सही सवाल है। देखिए, गुरुदेव इसी बात को उस कहानी से समझाते हैं ना, गधे और ऊंट वाली।
हाँ हाँ वो एक दूसरे की झूठी तारीफ करते हैं।
बिल्कुल। अहो रूपम अहो ध्वनि, मतलब अरे वाह क्या रूप है, क्या आवाज है। ये दिखाता है कि जो सतहीपन है, जो झूठी प्रशंसा है, वो ईश्वर के स्तर पर बिल्कुल बेमानी है।
मतलब उन्हें शब्दों से बहकाया नहीं जा सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो फिर अगर ये सब बाहरी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं, तो भगवान से जुड़ने का, उनकी कृपा पाने का सही रास्ता क्या है? क्योंकि अक्सर तो लोग पूजा पाठ, मंत्र जाप, इसी को भक्ति मान लेते हैं।
जी, गुरुदेव कहते हैं कि देखो, कोई भी कीमती चीज पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, तो भगवान की कृपा पानी है, उनसे जुड़ना है, तो उसकी भी कीमत है।
कीमत? कैसी कीमत?
इसके लिए वो दो मुख्य रास्ते बताते हैं, तप और योग।
तप, ये शब्द सुनने में थोड़ा कठिन लगता है। आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है?
गुरुदेव ने तप का मतलब बहुत व्यवहारिक बताया है। तप यानी आत्मसंशोधन, सेल्फ करेक्शन।
अच्छा।
अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, जो हमारे अंदर की गंदगी है ना, उसे पहचानना और फिर उसे दूर करने के लिए पूरी दृढ़ता से कोशिश करना, ये एक तरह का अनुशासन है खुद पर।
ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हुई।
बिल्कुल, निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार।
और दूसरा रास्ता आपने बताया, योग। अब योग का मतलब यहाँ सिर्फ आसन लगाना तो नहीं होगा शायद?
नहीं नहीं, यहाँ योग का मतलब है जुड़ना, विलीन हो जाना, अपने छोटे से मैं को, अपने अहंकार को गलाकर उस बड़ी सत्ता में मिला देना।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे पानी की बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र ही बन जाती है, है ना? या जैसे एक स्त्री विवाह के बाद पति के घर परिवार में, उसकी संपत्ति में एक तरह से घुल मिल जाती है, उसकी स्वामिनी हो जाती है, वैसे ही भक्त का भगवान में पूरी तरह समर्पित हो जाना, मिल जाना ही योग है।
लेकिन ये जो समर्पण की बात है या विलीन होने की बात, क्या ये सिर्फ कहने भर से हो जाता है? जैसे कई लोग कह देते हैं, हाँ जी हमने तो सब सौंप दिया भगवान को।
हाँ, यही यही गुरुदेव चेताते हैं, ये सिर्फ जुबान का खेल नहीं है। भगवान वो हमारे शब्दों को नहीं, हमारे दिल की आवाज को, हमारी नियत को, हमारे ईमान को देखते हैं।
अच्छा।
जैसे वो कहते हैं ना, जैसे नेता वोट मांगते समय सबसे हाँ में हाँ मिलाता है, पर दिल में कुछ और होता है।
हाँ बिल्कुल।
तो अगर हमारे कर्म, हमारा आचरण वैसा नहीं है, तो जुबान से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। भगवान को जीभ से बहकाने की कोशिश बेकार है।
तो फिर अगर भगवान शब्दों से नहीं, नियत से प्रभावित होते हैं, तो उनकी कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की इच्छा पूरी करनी होगी।
जी,
पर सवाल यह है कि भगवान की इच्छा क्या है?
और गुरुदेव इसका बहुत साफ जवाब देते हैं, लोक मंगल, जन कल्याण, दूसरों की भलाई, समाज का भला।
लोक मंगल?
हाँ, आप देखिए ना, जितने भी महान भक्त हुए हैं इतिहास में, अब बुद्ध को देखिए, महावीर को, शंकराचार्य, नानक, कबीर, या आज के समय में देखें तो विवेकानंद, दयानंद, इन सब ने क्या किया?
उन्होंने समाज के लिए काम किया।
बिल्कुल, अपनी साधना पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में, समाज को सुधारने में लगा दिया। तो सच्ची भक्ति जो है ना, वो इंसान को कमरे में बंद करके सिर्फ माला जपने तक सीमित नहीं रखती। जब भक्ति दिल में उतरती है, तो अपने साथ करुणा लाती है, और वो करुणा फिर सेवा के रूप में बाहर निकलती है।
गुरुदेव ने इसको समझाने के लिए वो जाट वाली कहानी भी सुनाई है ना, जो मेले में खाट बेचने जाता है।
हाँ हाँ, बहुत अच्छी कहानी है वो, कि वो मेले में खाट बेचने गया, पर उसके पास खाट का सिर्फ एक पाया था, एक पैर,
बस एक पाया।
हाँ, बाकी तीन पाए गायब, पार्टी नहीं, बुनावट नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि लोग अक्सर भक्ति का बस एक हिस्सा पकड़ लेते हैं, जैसे सिर्फ माला जपना या पूजा करना,
और उसी को पूरी भक्ति समझ लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, जबकि ये उस एक पाए वाली खाट की तरह अधूरा है। देखिए, उपासना के चार अंग बताए गए हैं, जप या ध्यान, स्वाध्याय यानी ज्ञान बढ़ाना, संयम यानी इंद्रियों पर काबू, और सेवा यानी परमार्थ।
चार अंग जी।
लोग अक्सर सबसे आसान वाला पकड़ लेते हैं, जप, लेकिन जब तक जीवन में आत्म सुधार, संयम और सबसे जरूरी सेवा नहीं है, तब तक वो माला या जप भी अधूरा है, वो खाट पूरी नहीं होती।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा का महत्व। इस पर गुरुदेव ने बगदाद की जमीला बीबी की कहानी भी बताई है शायद।
हाँ बताइए। जमीला बीबी ने हज जाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े थे, पाई पाई करके
जी,
लेकिन जिस साल उन्हें जाना था उसी साल उनके इलाके में भयानक अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर रहे थे। तो जमीला बीबी ने क्या किया, उन्होंने हज जाने का इरादा छोड़ दिया
और वो सारे पैसे
लोगों की सेवा में लगा दिए।
हाँ,
उन भूखे प्यासे लोगों की मदद में खर्च कर दिए, और जब हज करके लोग लौटे तो फरिश्तों के जरिए पता चला कि खुदा ने जमीला की हज यात्रा को सबसे बढ़िया माना, सबसे कबूल हज उसी का हुआ,
भले ही वो शारीरिक रूप से काबा तक नहीं गई।
बिल्कुल, क्योंकि सच्ची इबादत पैरों से नहीं, ईमान से होती है, नियत से होती है, और इस बात से होती है कि आपकी भक्ति से किसी का भला हुआ या नहीं। इसे आडंबरों से या सिर्फ मीठे मीठे शब्दों से बहकाया नहीं जा सकता, उन्हें रिझाया नहीं जा सकता। सच्ची भक्ति, या जैसा गुरुदेव कहते हैं भजन, वो सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है, वो असल में जीवन जीने का एक तरीका है।
जीवन जीने का तरीका।
हाँ, जिसमें दो चीजें जरूरी हैं। पहली तप, यानी लगातार खुद को सुधारना, अपनी कमियों पर काम करना।
और दूसरी?
दूसरे योग, यानी परमार्थ और सेवा के जरिए लोकमंगल के काम करके खुद को भगवान की इच्छा में विलीन कर देना, उनकी मर्जी पूरी करना।
तो संक्षेप में, आत्म सुधार और निस्वार्थ सेवा।
बिल्कुल, यही सच्ची भक्ति है।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए कि कहीं हमारी भक्ति भी उस एक पाए वाली खाट जैसी अधूरी तो नहीं।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
हमारी उपासना की जो चारपाई है उसमें कौन कौन से पाए, आत्म सुधार, संयम, स्वाध्याय और सेवा, कहीं गायब तो नहीं है या बहुत कमजोर तो नहीं?
जी, इस पर अगर हम सोचें तो शायद अपनी भक्ति को ज्यादा सार्थक और सही दिशा दे पाएंगे।
बिल्कुल सही कहा। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।